नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं हूं सचिन मंसारे और आप मुझे सुन रहे हैं यूथ सिविल सर्विसेज एकेडमी के ऑडियो चैनल पर। दोस्तों, पिछली क्लास में यानी पिछले ऑडियो लेक्चर में हम लोगों ने मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, भाग तीन में जो दिया है इनके बारे में। तो हमने समता का अधिकार 14 से लगाकर 18 तक के बीच में हमने पढ़ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, सेकंड पार्ट जो हमने बनाया था उसमें 19 और 20 के बारे में हमने पढ़ा है, और आज इसके बाद थर्ड पार्ट बना था दोस्तों कि जो 21 आर्टिकल से रिलेटेड ये पिछला ऑडियो लेक्चर था, आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल 22 के बारे में, यानी कि गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण के बारे में, ये मनमानी हिरासत में लेने के विरुद्ध क्या क्या हमारे पास अधिकार है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑडियो है और ये आपके दैनिक जीवन से संबंधित भी है, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है और जो केसेस हैं उसकी भी स्टडी हम करेंगे। तो ये एग्जाम की दृष्टि से, चाहे आप यूपीएससी के एग्जाम्स देख लीजिएगा या एमपीपीएससी की, स्टेट लेवल की या एसएससी या फिर व्यापम कांस्टेबल और एसएससी, जितने भी तमाम एग्जाम्स हैं इंडिया की, उनमें सभी जगह, क्योंकि संविधान हमारा एक ही है और आर्टिकल भी वही है, तो ये हमें पढ़ना जरूरी है और बहुत ही मजा आने वाला है। ये हमें एक अनपढ़ व्यक्ति हो, चाहे एक पढ़ा लिखा हो, चाहे कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाला हो, सभी को ये जो आर्टिकल्स है, हमारे अधिकार है, ये हमें जानकारी में होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए, जिससे हमारा कोई भी अधिकार हनन न हो सके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखे दोस्तों, आर्टिकल 22 को यानी कि अनुच्छेद 22 को, अब ये क्या होता है इसके बारे में फुल डिटेल में देखेंगे कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित है। इसके बारे में कि जो व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और किसी भी इसमें केस में दोस्तों गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसके पास इसके लिए आप फिर क्या करना चाहिए, इसका फिर इलाज क्या है, या व्यक्तियों के अधिकार और जो स्वतंत्रता इससे संबंधित क्या है, यदि कोई व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके साथ हम देखने वाले हैं। तो साथ ही साथ दोस्तों, अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 21 का एक पूरक कॉम्प्लीमेंट माना जाता है, किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षित करता है और इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, ये यहाँ पर वर्णन मिलता है। अब बात करें आर्टिकल 22 के अनुसार, गिरफ्तारियां दो प्रकार की होती है, एक तो सामान्य विधि के अधीन गिरफ्तारी होती है और एक निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तारी होती है। तो अनुच्छेद 22 के खंड 1 और 2 में किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तार हुए व्यक्तियों को इस प्रकार से अधिकार प्रदान किए जाते हैं, वो हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को यदि किसी भी व्यक्ति को विरुद्ध करना यानी पकड़ना और हिरासत में रखने का उस व्यक्ति को कारण बताया जाएगा और उसे अपने मनपसंद वकील से परामर्श और अपनी रक्षा का अधिकार होगा। इसको समझे दोस्तों, सिंपल सी बात कि यदि आपको बिना बताए पुलिस ने पकड़ लिया है, हिरासत में ले लिया है, तो उसका कारण बताना होगा, कारण बताया जाएगा कि भैया आपने ये दंड किया है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या किया गया है, जेल में बंद किया गया है या पुलिस लेकर जा रही है, और ये अभी अधिकार दिया गया है जो भी अपराधी है या जो भी जिसको पकड़ा गया है, उसको अपने मनपसंद वकील करने से को लेकर यह अधिकार दिया गया है कि उनसे परामर्श कर सकता है और अपनी रक्षा का अधिकार उसको होगा। इसके बाद दूसरी बात क्या बोली गई है दोस्तों, आर्टिकल 22 में खंड एक के दो में, ये पार्ट दो में दिया गया है, क्या वर्णन मिलता है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर, जिसमें यात्रा का समय भी शामिल नहीं है, मतलब ये कि किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद ही वह 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखा जा सकता है। यदि 24 घंटे आपको, यदि सपोज डेट पुलिस ने पकड़ लिया है, थाने में बंद हो, तो आप क्या करेंगे, आपको 24 घंटे के लिए सिर्फ थाने में रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, मजिस्ट्रेट यदि बोल देगा कि नहीं इनको और रखिएगा, 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखा जा सकता है, जेल की जा सकती है, तो कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे के भीतर आपको डायरेक्टली कहां पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अच्छा, 24 घंटे के भीतर दोस्तों, ये आपके मन में दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या जिसमें यात्रा का समय भी शामिल है, तो यात्रा का समय दोस्तों शामिल नहीं होता है। आगे की बात करें अनुच्छेद 22 का संरक्षण देखें आगे, और तो सामान्यतः सभी व्यक्तियों के लिए, सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, जैसे शत्रु देश के व्यक्तियों को और निवारक निरोध अधिनियम के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों को भी प्राप्त ये नहीं होता है। शत्रु देश के व्यक्तियों को मतलब ये कि जैसे पाकिस्तान का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पर आ जाए, उसको पकड़ लिया जाए, या जैसे कसाब हो गया था या और अन्य आतंकवादी या जो भी लोग हैं, उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। ठीक है। और अब इसके अलावा दोस्तों एक निवारक नजरबंदी, ये आपने कई बार सुना होगा कि निवारक नजरबंदी ये क्या होती है। आपको मालूम होगा कि महबूबा मुफ्ती और जितने भी जो जम्मू कश्मीर के जो बड़े बड़े नेता हैं इनको क्या नजरबंदी कर लेते हैं, तो ये उसके बारे में क्या है। तो किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले मात्र संदेह के आधार पर हिरासत में लेना, जिसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। निवारक नजरबंदी दोस्तों यह है कि जैसे कोई त्यौहार आता है आपके गांव में, आपके शहर में कभी देखा होगा कि जो ख्याति गुंडे हैं, बदमाश लोग हैं, जिन्होंने चोरी डकैती हत्या और लूट और इन मामले में रहते हैं, जिनके ऊपर सैकड़ों या पहले से ही क्या केस दर्ज होते हैं, तो क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले ही जो मालूम है कि ये अपराधी है तो उसको संदेह के आधार पर हिरासत में ले लेते हैं और जिसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो ये निवारक नजरबंदी इससे संबंधित है। अब संविधान में निवारक नजरबंदी के आधार क्या क्या माने गए इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि ये जो निवारक नजरबंदी है दोस्तों ये समवर्ती सूची का विषय माना जाता है। समवर्ती सूची का मतलब क्या कि जिस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, इसलिए संघ एवं राज्य दोनों अलग अलग निवारक नजरबंदी के कानून पर निर्माण कर सकते हैं। अब संघ सरकार को यानी कि केंद्र सरकार को राष्ट्र की सुरक्षा संप्रभुता बनाए रखने के लिए निवारक नजरबंदी के कानून बनाए जाते हैं, जबकि राज्य सरकार के द्वारा लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नजरबंदी विधेयक का निर्माण किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो पहले से कुख्यात गुंडे बदमाश है वो उन लोगों को दोस्तों क्या करते हैं कि लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कि त्यौहार आ रहे हैं और इनमें कोई अन्य गतिविधि न करे, कोई दंगा फसाद न करे, इसलिए उनको पहले ही क्या कर लिया जाता है, संदेह मात्र के आधार पर पहले ही हिरासत में ले लिया जाता है और 24 घंटे के भीतर इनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता। जबकि अन्य इनके बारे में बात की जाए तो किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं तो दोस्तों 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। और यही बात हमने कही है निवारक नजरबंदी के बारे में। अब निवारक नजरबंदी जो है इसके टाइप्स देख लेते हैं। आर्टिकल 22 में बी में दिया गया है कि कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को 3 महीने तक पुलिस के द्वारा नजरबंद किया जा सकता है। अब यहां पर बात आ रही है कि किसी भी व्यक्ति को कितने समय तक निवारक नजरबंदी के इसमें बंद कर सकते हैं, तो 3 महीने तक दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं किसी व्यक्ति को भी। क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को 3 महीने तक पुलिस के द्वारा नजरबंद किया सकता है, लेकिन किंतु क्या होता है कि जब किसी को आगे तक बंद रखना है तो उसके लिए क्यों दोस्तों क्या होता है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनने वाली समिति के अनुमति के बाद ही व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा नजरबंद और भी किया जा सकता है। ये बात भी यहाँ पर कही गई है निवारक नजरबंदी अधिनियम में यानी कि आर्टिकल 22B में। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि संसद क्या कर सकती है कि कानून बनाकर निवारक नजरबंदी की अधिकतम सीमा को निर्धारण कर सकती है, 3 महीने से भी ज्यादा कर सकती है, 6 महीने से भी ज्यादा कर सकती है। किसके पास अधिकार है, संसद के पास है। दिसंबर 2001 की घटना हम देखते हैं दोस्तों कि संसद पर जो एक हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद तत्कालीन सरकार ने क्या बना दिया, एक एक्ट तैयार किया जिसको कहा जाता है पोटा। अब ये पोटा क्या है दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट जिसको कहा जाता है, पी से प्रिवेंशन, ओ से ऑफ, टी से टेररिस्ट और ए से एक्ट का निर्माण किया गया, जिसमें व्यक्ति को निवारक नजरबंदी में 6 महीने तक बंद करने का प्रावधान था। आपसे क्वेश्चन ये आता है कि बताइए कि पोटा आने की प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट के तहत कितने महीने तक किसी व्यक्ति को नजरबंद किया जा सकता है, तो दोस्तों 6 महीने तक नजरबंद किया जा सकता है। जबकि निवारक नजरबंदी में दोस्तों कितना, निवारक नजरबंदी में दोस्तों 3 महीने तक बंद किया जा सकता है। इसके अलावा 3 महीने से ज्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति बनेगी और समिति निर्धारण करेगी कि ये व्यक्ति को कितने महीने तक अंदर रखना है। और ये जो नजरबंदी से रिलेटेड, निवारक नजरबंदी से रिलेटेड जो भी कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है, संसद के पास है। अब एक बात करें इसमें देखते हैं कि ये क्या होता है आगे चलकर दोस्तों। सबसे पहली बार यानी कि जो प्रथम निवारक निरोधक अधिनियम बनाया था, पारित किया गया था, तो दोस्तों ये 1950 में क्या किया गया था, इसको बनाया गया था निवारक नजरबंदी के जो प्रथम बना था अधिनियम, ये कब बनाया गया था, 1950 में। और ये सक्सेस भी रहा कब तक, 1969 तक प्रभाव में रहा। 69 तक दोस्तों क्या रहा, प्रभाव में रहा। फिर इसके बाद आ जाता है दोस्तों कौन सा, एक 69 के बाद एक साल छोड़ कर आने के 70 और एक 71। 71 में एक आता है मिसा। अभी मिसा जो है ये है दोस्तों, मिसा का पूरा नाम है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये 1971 में बनता है, जिसका मतलब होता है शुद्ध हिंदी में बात करें तो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 में आता है और इसका शॉर्टकट नाम है, संक्षिप्त नाम है मीसा। तो दोस्तों मीसा एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में आती है, यानी कि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। तो 1971 में ही दोस्तों क्या होता है कि इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे पास करवाया था। इसके बाद वो सरकार के पास क्या हो गए कि असीमित अधिकार आ गए, बहुत सारे अधिकार आ गए इसके अंतर्गत। तो दोस्तों क्या होता था कि असीमित अधिकार इनके पास आ गए, इंदिरा गांधी की सरकार ने इसको पास करवा लिया 1971 में। तो सबसे ज्यादा अधिकार आ गए यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा के तहत। अब पुलिस या सरकारी एजेंसियां कितने भी समय के लिए किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते थे, गिरफ्तार कर सकती थी और किसी की भी तलाशी बिना वारंट के ली जा सकती थी। इसमें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल मीसा एक्ट का था, क्योंकि मीसा बहुत पावरफुल उस समय था, क्यों इसमें कोई भी पुलिस या सरकारी एजेंसियां कितने भी समय के लिए किसी भी व्यक्ति को क्या जेल में डाल दिया करती थी। अब क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति को वही जा रहे हैं तो बोले तलाशी लेने के, और किसके तहत, मीसा एक्ट के तहत। ये इंटरनल सुरक्षा के आधार पर सबकी चेकिंग की जाती थी। और साथ में दोस्तों जो वर्तमान में पेगासस का मामला आया था, वही का वही मामला पहले भी चल रहा था, यानी कि सरकार के लिए फोन टेपिंग की जो सुविधा थी, फोन टेपिंग भी किसी की भी इंटरनल बातें, किसी की भी गोपनीय बातें क्या करते थे, टेप कर लेते थे। सरकार के लिए फोन टेपिंग भी क्या बन गई थी, एक लीगल बन चुकी थी। और इसके बाद में जस्ट उसके 6-7 साल बाद 1977 में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, और आते ही उन्होंने इस कानून को पहले क्या किया, रद्द कर दिया गया। तो क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही मीसा एक्ट आता है तो इसको 1977 में भारतीय जनता पार्टी ने क्या करते हैं, सत्ता में आते ही इन्होंने कानून को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। क्योंकि ये कानून इतना खतरनाक था कि पुलिस या कर्मचारी क्या करते थे, किसी भी व्यक्ति को बेवजह क्या करने लग जाते थे, इंटरनल सिक्योरिटी के कारण दोस्तों किसी की भी गिरफ्तारी कर लेते थे और कभी तक भी जेल में डाले पड़े रहते थे। इसके साथ ही किसी की भी तलाशी ली जाती थी, वो भी बिना वारंट के भी, बिना इस पे भी। और सरकार क्या करती थी कि हर किसी भी व्यक्ति की फोन टेपिंग कर सकती थी और ये लीगल बन चुकी थी। तो इसको दूर करने के लिए फिर एक दोस्तों एक एक्ट आता है, टाडा एक्ट जिसको कहते हैं। और टाडा का पूरा नाम है दोस्तों टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एक्ट। ये 1985 से बना और 1995 तक चला दोस्तों। और ये क्यों लाया गया था, टाडा क्यों लेकर आए थे, इसका पूरा नाम आपको मैंने बताया, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1985 में आया और 1995 तक रहा। इसका रीजन क्या था दोस्तों, क्यों इसको लाया गया, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो क्या होता था कि पंजाब में उस समय क्या बहुत ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां चल रही थी, और पंजाब के में बढ़ते आतंकवाद के चलते क्या हुआ कि सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार देने के लिए यह कानून लाया गया था। और इस कानून का दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं हम, आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि अधिनियम, आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि अधिनियम। और इसी के तहत दोस्तों आपको मालूम होगा कि संजय दत्त को जो हीरो है, एक्टर है संजय दत्त को इसी कानून के तहत क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था, आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि अधिनियम। तो इसमें क्या होता था कि आतंकवादी गतिविधियों में जो संलिप्त किसी अभियुक्त को, किसी आरोपी को दोस्तों क्या करते थे कि 180 दिन या 6 महीने तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता था, और एक बार इसको दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित कर पुनः वापस से 180 दिन हिरासत में रखा जा सकता था। कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी कोई व्यक्ति भी यदि कोई इन गतिविधियों में संलिप्त तो पाया जाता है तो उसको 180 दिन या 6 महीने तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता था। फिर उसको किसके दंडाधिकारी यानी कि तहसीलदार या फिर बोल सकते हैं कि जो भी दंडाधिकारी है सुप्रीम कोर्ट या मजिस्ट्रेट, इनके सामने क्या उपस्थित कर वापस से इनको 180 दिन के लिए क्या कर दिया जाता था, हिरासत में रखा जाता था। तो ये होता है दोस्तों टाडा के बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं रासुका के बारे में, और जिसको रासुका का पूरा नाम है दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ये 1980 में लाया गया था, 22 सितंबर 1980 को राष्ट्रीय सुरक्षा का जो से रिलेटेड अध्यादेश जारी किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड ये अध्यादेश जारी किया गया था। और आगे हम करने वाले हैं, फिर से थोड़ा सा देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून दोस्तों कब आया, ये 1980 में आया, और इसको का क्या कहा जाता है, रासुका कहा जाता है। और 22 सितंबर 1980 को राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश जारी किया गया। और रासुका का उद्देश्य क्या है, क्यों लेकर आए, तो रासुका का उद्देश्य दोस्तों देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को संकट पैदा करने वाले, सांप्रदायिक विष फैलाने वालों और जाति दंगों को प्रेरित करने वाले समाज कंटक व्यक्तियों के लिए क्या ये विरुद्ध करना, मतलब इनको क्या करना कि जो दंगे फसाद करते हैं और समाज, जो हमारे देश है, समाज है, इसमें अखंडता फैलाना, संप्रभुता को संकट पैदा करना, सांप्रदायिक जहर घोलना और जातिगत दंगों को प्रेरित करना, और मतलब ये इन पर क्या रासुका का ये लाया गया था। 22 सितंबर 1980 को राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश जारी किया गया, जिसको हम साटकर संक्षिप्त नाम क्या बोलते हैं, रासुका बोलते हैं। तो आज भी वर्तमान में कई लोगों के ऊपर जैसे दोस्तों रासुका लगाई जाती है, जैसे यूपी में तो बहुत ज्यादा अभी चल रहा है। आगे हम बात करते हैं पोटा के बारे में। ये पोटा कौन सा एक्ट होता है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जिसको कहा जाता है, और ये आया था, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, इसके बारे में थोड़ा सा हम डीप में पढ़ लेते हैं कि 2002 में संसद पर हमले के बाद प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट नाम से ये कानून पास किया गया। और टाडा की तरह इसके जरिए भी सरकारी सुरक्षा एजेंसियों को असीमित अधिकार मिल गए थे। इसके अधीन किसी भी मामले में दर्ज FIR की पुष्टि जो होती थी वो पुलिस महानिदेशक व संबंधित समीक्षा समिति द्वारा 10 दिन और 1 माह के भीतर किया जाना आवश्यक था। साथ ही गिरफ्तार अभियुक्त की सूचना तत्काल परिवार को देने और पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि 30 दिन निर्धारित की गई। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों राजा भैया और तमिलनाडु के जो सीनियर नेता थे वाइको, इस एक्ट में गिरफ्तार होने वाले प्रमुख नेता माने जाते हैं प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत। इसके बाद दोस्तों 21 सितंबर 2004 को केंद्र सरकार द्वारा एक जारी अध्यादेश के जरिए इस अधिनियम को क्या कर दिया, रद्द किया, और उसकी जगह लेकर आए UAPA। UAPA का पूरा नाम दोस्तों होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। और इस कानून को इंदिरा गांधी के राज में 1967 में पास किया गया था, और बीच में कई बदलावों के साथ आज भी ये जारी है। और इस कानून के जरिए दोस्तों क्या होता है कि मानव अधिकारों के हनन का आरोप लगाया जाता रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर GN साई बाबा और कोबार गांधी को इसी एक्ट के तहत क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। और ये आगे नेक्स्ट इसके बारे में हम बताएंगे। एक और एक्ट आता है अफसपा तो आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये दोस्तों 1958 में इस कानून को लेकर सबसे ज्यादा कोहराम मचाया गया था कि हिंसाग्रस्त आतंकग्रस्त क्षेत्रों में इस कानून को लगाया जाता है। अभी कश्मीर और पूर्वोत्तर के भागों में यह कानून लागू है अफसपा, और इसमें घातक शक्ति जो लिथल फोर्स होती है, गिरफ्तारी और तलाशी के लिए सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार मिल जाते हैं। अफसपा से संबंधित मामलों की जांच के लिए दोस्तों संतोष हेगड़े कमेटी का निर्माण किया गया। और अफसपा के बारे में आपको ये भी मालूम होगा कि दोस्तों एक समाज सेवी है जिन्होंने क्या किया था कि असम में ये लागू है, पूर्वोत्तर राज्य में लागू है, जिनका बहुत चर्चा में नाम हुआ था कि इन लोगों ने क्या अमरण अनशन चालू कर दिया था अफसपा लागू होने के कारण। क्योंकि रीजन ये था कि दोस्तों वहां पर निर्दोष लोग भी मारे जा रहे थे, क्योंकि स्पेशल पावर किनको दे रखी थी, जो हमारे यहाँ के विशेष बल थे उनको पावर दे रखी थी, इसलिए सुरक्षा बलों को कहीं भी तलाशी और कहीं भी तो उसमें आम जनता भी मारी जाती थी। तो इसके विरोध में दोस्तों उस महिला का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, आप उसको सर्च कीजिएगा, असम या अरुणाचल प्रदेश में है इसके बारे में। तो वो महिला ने क्या किया है कि आंदोलन भी किया और साथ में दोस्तों अनशन भी जारी रहा उनका भूखे पेट। मिलते हैं हम दोस्तों नए लेक्चर के साथ में, शोषण के विरुद्ध अधिकार हम नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और ये आप क्या कीजिएगा कि इनके बारे में एग्जाम्पल ढूंढते रहिएगा, तो आपको बहुत जल्दी और अच्छे समझ में आते जाएगा। जैसे आज हमने क्या क्या पढ़ा, किन किन बारे में पढ़ा, तो दोस्तों हमने आज पढ़ा था निवारक नजरबंदी के बारे में, इसके अलावा दोस्तों हमने पढ़ा गिरफ्तारी में संरक्षण के लिए, इसके अलावा दोस्तों पोटा पढ़ा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट पढ़ा, मिसा एक्ट पढ़ा, इसके अलावा दोस्तों टाडा पढ़ा हमने, टाडा के बाद रासुका पढ़ा, और रासुका के बाद फिर वापस से पोटा आता है, इसके बाद दोस्तों UAPA पढ़ा, फिर इसके बाद अफस्पा पढ़ा, और अफस्पा के बाद दोस्तों अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे। जय हिंद।